أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون، إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين، وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للإمام الحسن: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالعدب قبل أن يكسو قلبك. دول بيت محمد وعلي محمد. اس امید، اس دعا، اس آرزو، اس خواہش کے ساتھ کہ مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نوافل میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں، ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچیں، اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو، اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں اور ہماری اولاد کو محبان محمد و آل محمد میں سے قرار دے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اور اس امید اور اس خواہش کے ساتھ کہ ہماری یہ اتنا سی کوششیں ہمارے آقا اور مولا سید و سردار فرزند زہرا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مورد قبول قرار پائے، اور ہمیں ان مجالس سے حقیقی معنوں میں ادب امام حسین، روش امام حسین، مکتب امام حسین سمجھنے کی توفیق نصیب ہو. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. روش زندگی، زندگی گزارنے کے اصول، زندگی گزارنے کا طریقہ کار، وے آف لائف، یہ ہمارا بیہیویئر زندگی کے ڈے ٹو ڈے ورکنگ لائف کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں، اس میں ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کاموں کو کیسے انجام دینا چاہیے، وہ کیا روش ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا طرز زندگی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے چاہتے ہیں، اور وہ کون سا طرز زندگی ہے، وہ کون سا تفکر ہے، وہ کون سا زندگی گزارنے کا انداز ہے کہ جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا انداز ہے. اور اس عنوان کو ہم نے اس اہمیت کے ساتھ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جب انسان عقیدے، عمل اور حب و بغض کی بات کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے، ارزش مند ہے، ویلیویبل ہے، تھیوریٹیکلی اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی میدان کے اندر پریکٹیکلی جو چیز سب سے زیادہ تاثیر گزار ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، وہ اس کی زندگی گزارنے کے اصول اور روش ہے کہ میں اور آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا انداز کیسا ہے زندگی گزارنے کا. نہ فقط یہ کہ خود بذات ہی یہ ارزش مند ہے اور ویلیویبل ہے، بلکہ یہ چیز تاثیر گزار ہوتی ہے ہمارے حب و بغض کے اوپر، ہمارے عمل کے اوپر اور ہمارے عقیدے کے اوپر. जिसकी वजह से इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है और मुझे और आपको और ज़्यादा हसास होना पड़ता है इस चीज़ के बारे में कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं थ्योरेटिकली अकीदे अमल और हुब्बो बुक्स के एतबार से तो मेरी डायरेक्शन सही हो लेकिन मेरी जो ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ है वो दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो है अंदाज़ होना शुरू हो जाए और ख़ुदा ना खास्ता ये चीज़ मुझे और आपको मजबूर कर दे, मुझे आपको डायरेक्ट करे खुदा ना खासा वाकई मानों में अहले बैत अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट में खड़े होने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा ख़तर है, एक बहुत बड़ी इबरत है कि जो करबला के वाक़े से मुझे और आपको सीखनी है। एक बार दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अलबत्ता रविश और तर्ज़ ज़िंदगी के उसूलों को सीखने से पहले जो बातें मुझे और आपको करनी है अमली तौर पर, कल की मजलिस के अंदर एक बार फिर दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने उन प्रिंसिपल्स को जानने की कोशिश की थी जो फाउंडेशनल काम अंजाम देते हैं, जिस दरहकीकत उसकी बेसिस के ऊपर हमें वो इमारत कायम करनी है कि जिसके अंदर वो रविश और वो अंदाज़ वो तर्ज़ ज़िंदगी मुझे और आपको समझ में आएगा। पहले उन उसूलों को हमें एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें कबूल करना होगा, उस पर एग्री करना होगा और उसके बाद वो उसूल मुझे और आपको ले जाएंगे इस अमली ज़िंदगी के तरीक़ेकार के ऊपर जिसको हम इंशाल्लाह आज से डिस्कस करना चाहेंगे। इन उसूल जो प्रिंसिपल्स थे उसके बारे से हमने दो ग्रोह में इसको तकसीम किया, एक सबूती या पॉजिटिव या वो काम की जो मुझे और आपको करने हैं और एक सलबी नेगेटिव वो काम की जिससे मुझे और आपको अपने आप को दूर रखना है। जहाँ तक पॉजिटिव वो काम की जो मुझे और आपको करने हैं उसकी जब बात की गई तो हमने तकरीबन पांच के करीब उसूलों को, पांच के करीब प्रिंसिपल्स को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की, जिसमें से एक ख़ुद आका और मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की रिवायत से इस्तेफादा हासिल किया, जिसमें मेरे मौलाना ने तीन खसूसियात को बताया था, अहलुल बसरे व सब्र व इल्म। तीन खसूसियात को हमने यहाँ से लर्न किया कि इंसान को अपने इल्म और नॉलेज में इजाफ़ा करना है, इंसान को अपनी बसीरत के अंदर इजाफ़ा करना है जिसको हमने डीप अंडरस्टैंडिंग से ताबीर इस्तेमाल की थी, और एक इंसान को स्टेडफास्ट होना है, इस्तेकामत दिखानी है, जो रास्ता इख्तियार करेगा उसके अंदर जो है वो इस्तेकामत दिखाएगा तब वो नतीजों को हासिल कर सकता है। इसके अलावा दो और नुक्ते, और मैंने आपसे कहा था कि इन तमाम के बैक एंड के ऊपर जो है वो रिवायात और कुरानी आयात मौजूद है, जिसमें वक्त की कमी के बायस हम उसको तफसील में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन एक और नुक्ता कि जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था वो ये कि इंसान अपने अहदाफ को बहुत आली रखे, कम पर काने ना हो, ये दोनों चीज़ें जो वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अहदाफ को आली रखे लेकिन तवक्कुल ज़ात परवरदिगार के ऊपर हो, अपनी सलाहियतों तो पर तवक्कुल ना हो बल्कि परवरदिगार की ज़ात पर तवक्कुल हो, और जो कदम उठाए वो बहुत मोहकम उठाए, वो कदम जो उठाए उस पर बहुत ही फर्म डिसीशंस ले वहाँ पर, तब उसे जो है तासीर नज़र आएगी। ये वो पांच उसूल थे कि जो मुस्बत अंदाज में हमने डिस्कस किए। मनफी चीज़ें कि जिससे मुझे और आपको अपने आप को बचाना है वो ये कि इंसान को कभी भी ज़िल्लत को कबूल नहीं करना। ज़िल्लत वो रास्ता है कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का रास्ता नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं चाह कि वो और उनके चाहने वाले ज़िल्लत को कबूल करें, बल्कि ये रास्ता इज़्ज़त का रास्ता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीया, तमाम की तमाम इज़्ज़त खुदावंद मुताल और औलिया खुदावंद आलम को अता की गई है। दूसरा नुक्ता ये कि इंसान फ़रार ना करे, जब मुश्किल पेश आती है, जब डिफ़िकल्टीज पेश आती है, जो रियलिटीज़ है उसको अंडरस्टैंड करे और उसका मुकाबला करे, उससे फ़ाइट करे, उसके मुकाबले में आंखें बंद ना करे, बल्कि ही हैज़ टू स्टैंड अगेंस्ट दिस सिचुएशन दैट ही हैज़ टू फेस। तीसरा नुक्ता जो हमने समझने की कोशिश की थी कि जिसको इंशाल्लाह आज उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे, वो ये कि इंसान दुश्मनाने खुदा और दुश्मनाने अहले बैत की सीरत को देखे और दरहकीकत उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू करे। बाज़ औक़ात ये जो दुश्मन शनासी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुश्मन शनासी मुझे और आपको बताती है कि दुश्मन किन चीज़ों के बारे में हसास है, दुश्मन किस चीज़ को प्रोपगेट कर रहा है सोसाइटी के अंदर, दुश्मन किन कामों को अंजाम दे रहा है। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो मेरे आपके सामने मौजूद है, इसको रहबर मौजूद में ताबीर इस्तेमाल करते हैं कि जाहिलियत का दौर जदीद मेरे और आपके सामने जो मौजूद है, इसको सही मानों में इंसान अंडरस्टैंड करे तब मुझे और आपको समझ में आएगा कि ये कैसे ज़िंदगी गुजारने के उसूल मुझे और आपको बता रहा है, और मुझे जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं अगर हम तो हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, और वो ज़िंदगी डेफिनेटली 180 डिग्री ऑपोजिट है उस ज़िंदगी से कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेरे और आपके सामने पेश करे। बस दुश्मन के आमाल को, दुश्मन की रविश को, दुश्मन की तरह से ज़िंदगी को समझें, देखें, परखें, और फिर अपनी ज़िंदगी को 180 डिग्री ऑपोजिट करने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिवायत की जो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, कि आपके सामने पेश की थी, कि इसमें मेरे मौला ने कहा था कि हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले जब तक अपने लिबास पहनने के अंदाज को, अपने गिज़ा खाने के अंदाज को दुश्मनान अहले बैत के अंदाज के से सिंक्रोनाइज नहीं करते, उस वक्त तक वो लोग अजीज़ रहेंगे। लेकिन जब नऊज़ु बिल्ला उन्होंने उनके लिबास पहनने के अंदाज को, उनके गिज़ा खाने के अंदाज को इख्तियार किया, तो वो उनकी ज़िल्लत का आगाज़ होगा। ये ख़ुद मुझे और आपको बता रहे हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम मुझसे और आपसे चाहते हैं कि जो दुश्मनान अहले बैत की सुन्नत है, सीरत है, जो मैंने आपसे कहा ज़ियारत अमीनुल्लाह में दुआ करते हैं हम खुदा की बारगाह के अंदर, ऐ परवरदिगार दुश्मनान अहले बैत की सीरत से दूरी इख्तियार करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए इंशाल्लाह। एक बार दुरूद पेश मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यहाँ तक प्रिंसिपल्स की बात की हमने, उसूलों की बात की, उन फाउंडेशंस की बात की जिसके ऊपर इमारत कायम होनी है। अब इंशाल्लाह आज से कुछ अमली तर्ज़ ज़िंदगी के उसूलों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अगर खुदावंद आलम हमें तौफीक नसीब फरमाता है इंशाल्लाह ताला। मैं आज चंद कुल्ली प्रिंसिपल्स आपके सामने बयान करता हूँ, कुछ रविश और तर्ज़ ज़िंदगी के उसूल आपके सामने बयान करता हूँ जो हमें अमली तौर पर डिस्कस करने हैं। उनमें से अब खुदावंद आलम जितनी हमें तौफीक अता फरमाता है इन चंद रातों के अंदर जो हम खिदमत में मौजूद हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुफरे से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, हम देखेंगे कौन से आदाब को, कौन सी रविश को, कौन से तर्ज ज़िंदगी को हम थोड़ा तफसील के साथ डिस्कस कर सकते हैं। पहला नुक्ता कि जो बहुत ज़्यादा ताकीद है, इंशाल्लाह आज हम उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, वो इंसान का बाअदब होना है। इंसान की ज़िंदगी अदब के साथ ज़िंदगी गुजरनी चाहिए, उसका हर अमल बाअदब होना चाहिए। बेअदबी इंसान को कमालात से दूर कर देती है। इंसान को बाअदब होना चाहिए। रिवायात के अंदर जो ताबीर इस्तेमाल की गई, बाज़ औक़ात अदब की ताबीर इस्तेमाल की गई है, बाज़ औक़ात हया की ताबीर इस्तेमाल की गई है इसके लिए, और बाज़ औक़ात इफ़्फ़त की ताबीर इस्तेमाल की गई है। तकरीबन एक ही मफहूम है जिसको इंशाल्लाह थोड़ा तफसील के साथ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला रविश ज़िंदगी का, तर्ज़ ज़िंदगी का उसूल जो मुझे और आपको अपनाना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, अदब अपनी ज़िंदगी का उसूल और प्रिंसिपल बनाए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तरबियत के अंदर इस प्रिंसिपल को बुनियाद बना के काम करें इंशाल्लाह, कि हमें बाअदब ज़िंदगी गुजारनी है। दूसरा नुक्ता कि जो मुझे और आपको लर्न करना है, जो रविश ज़िंदगी के अंदर इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि डिसीजन मेकिंग के अंदर अजला ना करें, जल्दी ना करें। खुदावंद आलम ने कुरान करीम में इंसानों की जब सिफात रज़ीला को बयान किया, यानी जो हमारा वो जो हैवानी डायमेंशन है कि जो हमें बहुत सारे ऐसी डिज़ायर्स और लस की तरफ अट्रैक्ट करता है कि जिसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसके ज़रिए से अंजाम देते हैं, खुदावंद आलम एक नुक्ता बयान करता है, कान अल इंसान अजूला, कि इंसान वो जो इंसान का ये जो डायमेंशन है, जो हैवानी डायमेंशन है, वो इंसान को अजले की तरफ लेकर जाता है, वो डिसीजंस मेकिंग के अंदर जो है ना वो जल्दी करता है। इसको हम लोग तफसील के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मैंने कहा कि आज की सोसाइटी कैसे मुझे और आपको इस चीज़ की तरफ लेकर जाती है और कैसे हमें गलत डिसीजंस पे मजबूर करती है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल के एतबार से, रविश के एतबार से, तर्ज ज़िंदगी के एतबार से ये इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अजला ना करे, जल्दी ना करे, डिसीजन मेकिंग सोच समझ के कुछ मयारात के बेसिस के ऊपर में आप डिसीजन को अंजाम दें। तीसरा नुक्ता अपनी ज़िंदगी के अंदर ये उसूल बनाएं कि कामों को जो है वो मुस्तकिल अंजाम दें, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मेरे और आपके काम के अंदर। बाज़ औक़ात मैं और आप काम अंजाम देते हैं, काम अच्छे भी होते हैं, लेकिन हमारे साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हम कामों को कंसिस्टेंसी के साथ अंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उस काम की जो तासीर मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए वो तासीर मुझे और आपको नज़र नहीं आती। बस कंसिस्टेंसी वो तीसरा तर्ज़ ज़िंदगी का उसूल है कि जो मुझे और आपको अपनाना है। चौथा नुक्ता कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंशाल्लाह करबला की सीरत से मैं और आप उसको लर्न भी कर सकते हैं बहुत सारे डायमेंशन के साथ, अब कुरान करीम की आयात और रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम की रोशनी में इस नुक्ते पर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, वो ये कि मैं और आप इज्तिमाई काम करने की तरीक़ेकार को सीखें। ये जो सोसाइटी जिसके अंदर मैं आप रह रहे हैं, ये इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी है, मुझे और आपको तन्हाई के अंदर अकेली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करती है। मेरा आप दस से जमी तश्कीलाती ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर काम करने से फ़रार करते हैं। मुझे और आपको सीखना है ये काम। कुरान करीम मुझे और आपको दावा देता है, या यो लदीन आ मनु इर बितु व रा बितु इस बिरु व सा बिरु व रा बितु। आपस में रब्त इख्तियार करने को, आपस में कनेक्शन इख्तियार करने को, कलेक्टिव काम करने की अहमियत जो है वो कुरान करीम और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुझे और आपको ताकीद की इसके ऊपर। और ये रविश बचपन से आपके तर्ज ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए। मुझे और आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा फर्स्ट डे के साथ कि कैसे वो कलेक्टिव काम कर सकते हैं, कैसे वो एक इज्तिमाई मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। मैं और आप अपने फ़र्दी फ़कत कमालात को, फ़र्दी फ़ायदों को नहीं देखूं, बल्कि बाज़ मकामात पे मुझे अपने फ़र्दी फ़ायदों को कुर्बान करना पड़ता है ताकि एक इज्तिमा अपने कमाल को हासिल कर सके। इंसान को अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ता है ताकि पूरी उम्मत जो है वो फलाह और कामयाबी को हासिल कर सके। ये जज्बा, ये ईसार का जज्बा कैसे पैदा होगा कि जब मेरी और आपकी तर्ज ज़िंदगी के अंदर, मेरी और आपकी रविश के अंदर कलेक्टिव काम करने की हैबिट्स मैं शुरू से डेवलप करूँ। अगर मैंने इस काम को अंजाम नहीं दिया तो फिर नतीजा मुझे आपको हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा ये एक प्रिंसिपल है, ये एक रविश है तर्ज ज़िंदगी का, कि हमारी ज़िंदगी फ़र्दी नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी इंडिविजुअल बेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अल्लामा तआला रिजवान अल्लाह ताला अलैह एक बार दुरूद भेजें इस बुज़ुर्ग मर्द की रूह की सांसों कहते हैं कि अगर आप इस्लामी फ़िक का मुताला करें, अभी फ़िक की बात करें, इज्तिमाइयत सियासत उसकी बात नहीं की जाए, कहा कि इस्लामी फ़िक का अगर आप मुताला करें तो एक हुक्म फ़िकी अल्लामा तआला कहते हैं एक हुक्म फ़िकी भी हमें नज़र नहीं आता कि जिसके अंदर खुदावंद आलम ने इज्तिमा को मद्देनज़र नहीं रखा हो। मुझे और आपको अगर आप वो काम की जो नमाज की जो रब और अब के दरमियान इर्तिबात का काम है, वहाँ पर भी मुझे और आपको इस्तेबाब करार दिया गया कि आप नमाज को जमात के अंदर अदा करें। हमें और आपको कहा गया कि अगर तुमने गज़बी ज़बान जगह पर नमाज को अदा किया तो नमाज तुम्हारी बातिल है। बस ये जो कलेक्टिव वर्क और एफर्ट है, इसको मुझे और आपको सीखना होगा और इसको अपने आप को तरबियत देनी होगी। इस तरीके से ये रविश और हमारी तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए कि मुझे आपको इस तरीके से कामों का अंजाम देना है। एक और नुक्ता कि जो एक और रविश जो तर्ज ज़िंदगी का उसूल है मुझे और आपको सीखना है कि अपने आप को कंज्यूमर ना बनाए, अपने आप को चीज़ों को फ़कत इस्तेमाल करने वाला ना बनाए, बल्कि जनरेट करने वाला बनाए, प्रोड्यूसर बनाए, चीज़ों को जनरेट करें, चीज़ों को क्रिएट करें, क्रिएटर हो कंज्यूमर ना हो। ये जो सोसाइटी मुझे और आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन मुझे और आपको लेके जाना चाहती है, जो रविश मुझे और आपको सिखाई जा रही है, वो कंज्यूमरिज्म की रविश है कि जिसके अंदर मैं चीज़ों को कंज्यूम करता हूँ, मैं ज़्यादा मसरफ ग्राही की तरफ जो है वो मुझे और आपको लेकर जाया जा रहा है। मैं चीज़ों को जनरेट नहीं करता, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो बहुत सारे और नुकात हों। आपको और मुझे अपनी ज़िंदगी का उसूल ये बनाना है कि मैं कंज्यूम नहीं हो रहा हूँ, लोग मुझे यूटिलाइज़ नहीं करें। जॉब की भी अगर आप बात करें तो वर्क के एतबार से इस्लामी एथिक्स ये कहती है कि आप मजदूरी नहीं करें, आप जॉब नहीं करें, बल्कि आप खुद अपना काम करें, क्योंकि इस्लाम ये चाहता है कि इंसानों को इस तरह से तरबियत करें कि वो आज़ाद हों, लोग उसको कंज्यूम ना करें, उसकी एनर्जीज़ को, उसकी रिसोर्सेज को, उसकी सलाहियतों को दूसरे लोग इस्तेमाल ना करें, उसकी सलाहियतों को इस्तेमाल ना करें अपने फ़वाद के लिए नहीं, बल्कि वो उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि वो ख़ुद चीज़ों को जनरेट कर सके, इल्म को जनरेट कर सके। वो कौमें कामयाब होती हैं कि जो इनको सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी को जनरेट करती हैं, लेकिन वो कौमें इसी दुनिया के अंदर में और आप देखते हैं, वो कौमें की जो ज़ाहरी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा डेवलप नज़र आती हैं, लेकिन उनका सब का सब वो लोग ने किसी और से भीख मांग के जो है लिया हुआ है, वो कौमें हकीकी मानों में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कामयाब नहीं है। लेकिन वो कौमें कामयाब हैं कि जिन्होंने इल्म को जनरेट किया, जिन्होंने माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर दौलत को जनरेट किया, वो लोग हैं कि जो कामयाब है। सीरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को अगर एक जुमले में मैं और आप खुलासा करने की कोशिश करें, बस दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली अलैहिस्सलाम ने फ़कीराना ज़िंदगी की बात नहीं की, जाहिदाना ज़िंदगी की बात की है। अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जो माशरे के अंदर दौलत जनरेट करने के एतबार से सबसे ज़्यादा अमीर शख्सियत का नाम अली इब्न अबी तालिब है, लेकिन जब कंजम्पशन पे आते हैं तो अली अलैहिस्सलाम मिनिमम लेवल के ऊपर जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहा होता है। हमारा सिस्टम बिल्कुल अपोजिट होता है, हमारा क्रेडिट कार्ड उससे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होता है जितना ज़्यादा मैं और आप अर्न कर रहे होते हैं। ये सोसाइटी मुझे आपको इस तरफ लेके जा रही होती है, मुझे आपको मजबूर कर रही होती है इस तरह से कामों का अंजाम देने के लिए। मैं मुझे और आपको अपने आप को ट्रेन करना है जो तरबियत कुरान अहले बैत अलैहिस्सलाम मेरी और आपकी चाहते हैं। लिहाजा ये उसूल और ये रविश अपनी ज़िंदगी का अपनाने की कोशिश करें कि मैं और आप कंजम्पशन और कंज्यूमरिज्म से जो है बाहर निकलें, अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को जब मैं गाइड कर रहा हूँ हमारे स्कूलों के अंदर, हमारी मदरसों के अंदर, ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, जिस चीज़ को दावत दी जाए बच्चों को। बाज़ औक़ात मैं और आपके जहन के अंदर इस्लामिक स्कूल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसके अंदर एक बच्चों को जो है सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ा दी जाए, इमाम ज़माना की दुआ शुरू में पढ़ा दी जाए, आखिर में पढ़ा दी जाए, कुरान की तिलावत हो जाए, इस्लामिक स्कूल बन गया। उसके बाद इसके अंदर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सब का सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे भी स्कूल जो है वो इस्लामिक स्कूल। ये स्कूल इस्लामिक स्कूल नहीं कहला सकती। इस्लामिक स्कूल वो होगी कि जिसके अंदर वो प्रिंसिपल्स हों कि जो खुदावंद आलम और खुदावंद आलम के औलिया चाहते हैं कि मैं और आप अपने बच्चों को ऐसे तरबियत करें, वो घर इलाही और इस्लामी घर है कि जिसके अंदर ये बात की जाए। वो मिंबर इलाही और इस्लामी मिंबर है कि जिसके अंदर उन उसूलों और प्रिंसिपल्स को बताया जाए कि जैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़िंदगी गुजारने के उसूल मुझे और आपको बताते हैं। लेकिन अगर ये काम मैंने और आपने नहीं किया तो फिर मैं और आप वाकई मानों में जिस रविश और जिस सीरत पे अमल कर रहे होंगे तो वो तो फिर वही फिरौनी सिस्टम है कि जिसके अंदर मैं और आप उसका हिस्सा बन रहे हैं। सो वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट इट और इन प्रिंसिपल्स और इस रविश ज़िंदगी को अपने अंदर इंशाल्लाह मैं और आप इजाद कर सकें। एक और नुक्ता कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने कहा कि सब नुक्ते ऐसे हैं कि जिसके ऊपर शायद हमारे अगले 10 साल के जो अशरों का टॉपिक जो है वो यहाँ पर डिस्कस होता जा रहा है, अगर मुझे तौफीक हुई यहाँ पर आने की इंशाल्लाह। इसके बाद एक बार दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अपने आप को, अपने बच्चों को सख्तियों के लिए आमादा करें। बास औकात में और आप ये समझते हैं कि बच्चों को जितनी आसाइश देंगे वो ज़्यादा अच्छा है। ये दुनिया की हकीकत ये है कि दुनिया सख्तियों की जगह है। अकद खलक खुलक खलक नल इंसान फी कबद, खुदावंद आलम ने इंसान को सख्ती में खल किया है। इस दुनिया की हकीकत और उसके एसेंस का हिस्सा है कि इसके अंदर लिमिटेशंस हैं, इसके अंदर सख्तियाँ हैं, इसके अंदर मुश्किलात हैं, इसके अंदर हार्डशिप्स हैं, इसके अंदर ट्रायल्स हैं। आप और मुझे अपने आप को आमादा करना होगा इसके लिए। मैं और आप अपने आप को तैयार करें सख्तियों के लिए। जब सख्तियाँ हैं तो टूट ना जाएँ, सख्तियाँ हैं तो मैं और आप बिखर ना जाएँ, ये नहीं होना चाहिए। मेरी और आपकी ज़िंदगी के उसूल ये होने चाहिए, ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि मैं और आप अपने आप को सख्ती के लिए आमादा करें। वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से आमादा करना होगा ताकि जब सख्तियाँ आएँ तो मैं उसको खुशी के साथ एक्सेप्ट करूं, मैं फरार ना करूं उसे, मैं आंखें बंद ना करूं और सख्तियों पर शिकवा भी ना करूं। ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल हमारे साथ है और ये जो दर्द हमारा है बाज़ औक़ात हम इसको इम्पोज करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। जब करबला की तस्वीर में और आप पेश करते हैं तब भी बाज़ औक़ात ऐसी तस्वीर पेश करते हैं कि जो बहुत ही मिस्कीनाना तस्वीर की पेश की जाती है अहले बैत अलैहिस्सलाम की। खुदा की कसम ये मक्तल के जुमले हैं दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से। वो कहते हैं कि इन बच्चों को, मासूम बच्चों को, अभी जवानों को, अहले बैत अलैहिस्सलाम और बनी हाशिम के सरदारों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो बच्चे यतीम बच्चे थे कि जो सरदारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला के बंद में प्यासे बच्चे इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, कहा कि हमने आज तक किसी एक बच्चे को नहीं देखा कि हमारे सामने हाथ फैलाया हो और हमसे कुछ मांगा हो। इस कदर बाअख्लाक बाअदब बच्चे जो तरबियत की थे मकतब अहले बैत, मकतब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। हमें और आपको भी ऐसी तस्वीर पेश करनी चाहिए मकतब अहले बैत, मकतब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि जिसके अंदर ऐसे बच्चे तरबियत पाएँ कि जो भीख मांग के अपनी ज़िंदगी ना गुजारे, जो अपनी जो गवर्नमेंट्स की भीख के ऊपर ज़िंदगी नहीं गुजारे हो, उनके पास इतनी तवानाई मौजूद हो कि वो पावरफुल हो, कि वो जो है वो अपनी तवानाई, अपनी इनकम और अपने घर वालों को और बल्कि सोसाइटी के अंदर मौजूद जो नीडी अफराद हैं उनको भी वो खुद जो है वो सर्व कर सकें। मैं और आप ऐसे अफराद तैयार करके जो मुश्किलात के लिए, सख्तियों के लिए आमादा हो, सख्त तरीन हालात के अंदर जब उसको निज़ाम दिया जाए, जब उसके हाथ में बागडोर दी जाए तो ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। वो चैलेंज को एक्सेप्ट करें और बिस्मिल्लाह करके इस काम को अंजाम दे, खुदा पर तवक्कुल करें और अहले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने वाला ही इस काम को अंजाम दे सकता है, वरना इसके अलावा जो भी शख्स होगा वो टूट जाएगा, वो इस काम को कबूल नहीं कर सकता, वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे और आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा, अपने बच्चों को तरबियत करनी होगी इस रविश ज़िंदगी के एतबार से, इस तर्ज ज़िंदगी के एतबार से कि हार्डशिप्स के लिए अपने आप को आमादा करें, سختیوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، بہت زیادہ آسائشوں کے اندر زندگی نہ گزاریں. کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ دو دفعہ پاکستان جا کے اور بغیر لائٹ اور بغیر پانی کی وجہ سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی سخت کیسے گزاری جاتی ہے. ورنہ اگر پاکستان جانے کی ہمت نہیں تو بیک کنٹری کیمپنگ چلے جائیں، اور وہاں پہ بھی میں اور آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. ایک بار درود بھیجیں محمد والے محمد. یہ چند نکات تھے کہ جو میں نے کہا کہ یہ طرز زندگی اور روش زندگی کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہے. پہلا نکتہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ ہے ادب اور حیا. انسان اپنے آپ کو با ادب اور با حیا تربیت کرے، اور شاید ادب کے اسوہ کو اگر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہو، ادب کے رول ماڈلز کو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہو، آسمان امامت پر خورشید امام حسین کے اطراف میں جو ستارے کربلا میں موجود تھے، ہر ایک ادب کے اعتبار سے اپنے کمال پر موجود ہے. شخصیت کی اگر میں نام لینا شروع کروں، میں ابتدا کرتا ہوں آقا اور مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی سے. ایک بار درود بھیجے محمد والے محمد. نو محرم کو قبیلہ بنی کلب کا نمائندہ شمر کی صورت میں حسین کی خیام کے قریب آتا ہے، آواز دیتا ہے کہ ہمارے قبیلے کی خاتون ام البنین کے فرزند کہاں پر ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا. تین بار پکارا، کسی نے جواب نہیں دیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوالفضل عباس سے کہا، ابوالفضل تمہیں صدا دی جا رہی ہے. کہا آقا، شمر کو تو میں جواب نہیں دوں گا، آپ کا دشمن ہے، آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، میرے آقا، میرے ولی، میرے امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. امام نے کہا، میں حکم دیتا ہوں کہ اس کے سلام کا جواب دوں. یہ با ادب شخص، آقا نے جب حکم دیا، کہا چشم. شمر کے پاس جاتا ہے، کہا کیا پیغام لایا ہے؟ کہا امان ہے تجھے اے ابوالفضل عباس اور آپ کے بھائیوں کو کہ جو بنی کلب سے تمہارا تعلق ہے. یہ با ادب شخصیت شمر سے کہتی ہے کہ لعنت ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر، تو میرے لیے امان نامہ لایا ہے. اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا فرزند کربلا کے بن میں تک و تنہا چھوڑ دوں میں، تو یہ سمجھتا ہے لعنت ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر. یہ ادب ابوالفضل عباس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ یہ ان کی ماں ام البنین کا صدقہ تھا. جس دن سے یہ بی بی میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں انٹر ہوئی، تاریخ عجیب و غریب واقعات نقل کرتی ہے. بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بی بی کا اصلی نام فاطمہ تھا، لیکن جب گھر میں انٹر ہوتی ہیں، میرے مولا علی سے کہتی ہیں کہ میری سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کی وجہ سے اب آپ مجھے فاطمہ مت کہیے گا، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس نام سے مجھے پکاریں جو میری سیدہ، میری سردار، میری خاتون جنت کا نام ہے. باقی اس کے علاوہ بھی آپ نے انہی مقاتل کے اندر سنا ہے، میرے مولا ابوالفضل عباس ہمیشہ حسین کو آقا کہہ کے پکارتے تھے، ولی کہہ کے پکارتے تھے، امام کہہ کے پکارتے تھے. یہ ادب تھا ان شخصیات کا کہ جو کربلا کے اندر میرے اور آپ کے لیے ایک رہنما ہیں، میرے اور آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ ادب کیسے سکھایا جاتا ہے، ادب کیسے انجام دیا جاتا ہے. میں نے آپ سے چند دن پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر برگزار ہو رہی ہیں، کوشش کریں، کام معمولی ظاہری طور پر مادی اعتبار سے آپ یہ سمجھو کہ معمولی کام ہے، لیکن ادب سے اس کو انجام دیں. ادب کا لحاظ، ادب ادب یعنی کیا؟ یعنی جو آپ کی فارم ہے کام کو انجام دینے کی، وہ یہ شو کر رہی ہو کہ میں فقط کام کو برائے کام انجام نہیں دے رہا ہوں، میں اس کی ارزش کو، اس کی ویلیو کو جانتا ہوں، اور اس ویلیو کو جانتے ہوئے اس کام کو انجام دے رہا ہوں. کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے زبان سے، میرے کام کرنے کے انداز سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو یہ سمجھی جائے نعوذ باللہ کہ بے ادبی کی جا رہی ہے. بعض اوقات ये जो मजालिस बरकरार होती है उसमें कुरान करीम की जब तिलावत की जाती है शुरू में, मरसिया पढ़ा जाता है, मैं और आप शायद उसको उस तरह से अहमियत नहीं देते कि जो अहमियत दी जानी चाहिए। अदब का तकाजा ये होता है एक महफिल का कि इंसान उस महफिल के उस पूरी चीज़ का शिरकत करें, उससे इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश, जब तक मजबूरी ना हो। अगर इंसान के पास मजबूरी है वो एक अलग जाविया है, वरना अगर ऐसा नहीं है और मुझे और आपको एक चीज़ की तरफ दावत दी जा रही है, आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप और मैं ये देखें कि मौज़िन सुबह की नमाज़ के लिए, मौज़िन ज़ोहर असर की नमाज़ के लिए, मौज़िन मगरिब इशा की नमाज़ के लिए ये कह रहा होता है हय्या अलस सला, हय्या अलल फला, हय्या अला खैरिल अमल। मगर ये बेअदबी नहीं है कि मैं इस आवाज़ को सुनूं, मुझे मालूम हो कि वक्त हो चुका है कि मेरा रब मुझे एक चीज़ की तरफ दावत दे रहा है और मैं उसकी तरफ ना बढ़ूं, मगर ये बेअदबी नहीं है। मगर इसको मैं और आप अदब कहेंगे कि एक इंसान अदब का ख्याल रख रहा है। मैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैंने कहा कि इस प्रिंसिपल्स को जानने की कोशिश करें कि अदब वो उसूल, वो प्रिंसिपल, वो बुनियादी काम है कि जो मुझे और आपको सिखाना है अपने बच्चों को। दीन बाद में सिखाएं, अभी आप शायद उसे ना सिखाएं कि खुदा भी है, खालिक भी है तुम्हारा कोई, अभी उसे कुछ और चीज़ ना सिखाएं, अभी उसे इतना सिखा दें कि कामों को बाअदब तरीके से अंजाम देना शुरू करे। जब उसे समझ में आएगा कि उसका एक खालिक है, जब उसे समझ में आएगा कि उसका एक वली नेमत परवरदिगार मौजूद है, तो उसके सामने भी वो बाअदब रहेगा। लेकिन नऊज़ बिल्ला, अगर मैंने अपने बच्चों को अदब नहीं सिखाया तो फिर मैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उसकी तासीर मनफी अंदाज में देखेंगे। आज ये शायद मेरे सामने बेअदबी कर रहा है, आज शायद ये अपनी माँ के सामने बेअदबी कर रहा है, आज शायद ये अपने उस्ताद के सामने बेअदबी कर रहा है। जब उसके अंदर जुर्रत आएगी, जब ये बड़ा होगा, तो अपने वली के सामने भी नऊज़ बिल्ला बेअदबी करेगा, अपने खुदा के सामने भी बेअदबी करेगा। आज उसको ये महदूदियत समझ में आई थी कि मैं कम्प्लीटली अपने माँ बाप के कंट्रोल में हूँ, मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ, मैं उनके सामने बेअदबी कर सकता हूँ। कल जब उसे समझ में आएगा कि उसके परवरदिगार के सामने डिपेंडेंट है, तो नऊज़ बिल्ला उसके सामने भी अदबी करेगा। बस ये अदब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा इंशाल्लाह उसकी कुछ और जावी में, रिवायात की रोशनी में और कुरानी आयात की रोशनी में आपके सामने पेश करूँगा। एक बार दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ख़ास तौर पर ये जो सिविलाइजेशन जिसके अंदर मैं आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैंने कल भी आपके सामने ये ईडियम पेश किया था कि अदब अस की आमोख्ती अस बेअदबान। अगर आपको बेअदबी का सिंबल देखना है, अगर बेअदबी का रोल मॉडल देखना है, देखे नहीं, अगर जो देख चुके हैं माजी के अंदर उसको भी इंशाल्लाह से तौबा कर लें। हॉलीवुड जो है वो सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस बेअदबी की। जबान का इस्तेमाल देखें, आपको मालूम है कि कौन से वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बच्चों की इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बचपन से बनाया जाता है ऐसा कि बच्चा जब बोलेगा तो उसकी ज़बान पे ये अल्फाज जारी हों। किताबों के अंदर, मीडिया के अंदर, हर मकाम के ऊपर अल्फाज के अंदर इस बेअदबी का को उसकी ज़िंदगी का जुज़ बनाया जाता है। ये बेअदबी को उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाता है, यहाँ तक कि ये एहसास भी इंसान के लिए ख़त्म हो जाता है कि ये एक बेअदबी है, ये मुझे इस तरह से बोलने का हक नहीं बनता कि मैं इस तरीके की ज़बान एक बार दुरूद मोहम्मद ज़बान के एतबार से बदतरीन ज़बान को इस्तेमाल किया जाता है अपनी जज्बात और एहसासात के एक्सप्रेशन के लिए। जो दिल में आता है वो कहता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं जिस तरीके से चाहते हैं। मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये जुमला फरमाते हैं, मेरे मौला का जुमला है, गरुल हिकम का जुमला है, मेरा मौला फरमाते हैं, ज़ब्त नफ्स इंद रग़बी व रहिब मिन अफ़ज़लिल अदब। अगर बेहतरीन अदब मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो क्या है, अपने जज्बात को काबू में रखो जब तुम खौफ की हालत के अंदर हो, जब फियर की हालत में हो, जब मुश्किल हो तुम्हारे अंदर, या तुम मसलन बहुत ही खुशी की हालत में हो, अपने जज्बात को उस वक्त कंट्रोल में रखो। जब्त नफ्स हो, तुम्हारा नफ्स, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आँखें तुम्हारे कंट्रोल के अंदर हो। ये तुमने अपनी लगाम किसके हाथ में दे दी है कि जो दिल में आता है वो अपनी ज़बान से अदा करते हो। یہ کس نے کہا ہے تمہیں کہ اس طریقے کی زبان جو میں اور آپ استعمال کریں؟ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا یہ حقیقی معنوں ادب ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے مجھے آپ کو سکھایا ہے، اور یہ اپنی زندگی کا اصول بنائیں. میں اور آپ اپنے بچوں کو اگر زبان سے تاکید کرتے رہے نا کہ آپ باادب بنیں، باادب بنیں، ادب کریں، ادب کریں، اس طرح سے بچے باادب نہیں بنتے. مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر ادب کر کے دکھانا ہوگا. اگر میرا اور آپ کا بچہ ایک بار درود بھیجے محمد علی محمد، معصوم بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، دسترخوان پہ کوئی چیز گر جاتی ہے، میں کتنا باادب ہوں اس کے مقابلے میں؟ میرے کتنا ضبط نفس ہے اپنے؟ جب غصہ آتا ہے تو میں کتنا کنٹرول کر سکتا ہوں؟ اگر میں کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں تو میں خود بے ادب ہوں. میں اس کے لیے ایک ایسا رول ماڈل پیش کر رہا ہوں جو بے ادبی کا رول ماڈل ہے. ادب یہ نہیں ہے کہ جو میں اور آپ جس کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا بغیر کنٹرول کے جب چاہوں جیسا چاہوں اس کا اظہار کر دوں، یہ عین ادب کے خلاف ہے. اہل بیت علیہ السلام مجھے ضبط النفس کی بات کرتے ہیں، اور یہ تفسیر ہے، ڈیفینیشن ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ادب کی. ادب کیا ہے؟ کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو، جب تم چاہو تب اب تمہاری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے. یو شوڈ نو کہ یہ کلمہ رائٹ کلمہ ہے جو مجھے ادا کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کلمہ تمہاری زبان سے نکل جائے اور بعد میں تم افسوس کرو کہ میری زبان سے کیا کلمہ جاری ہو گئے. لیکن یہ ویسٹرن سویلائزیشن مجھے آپ کو سکھاتی ہے یہ روش، ہمارے آپ کے بچوں کی زندگی کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اسکولوں کالجوں کے اندر یہ جو تربیت دی جا رہی ہے اس کا حصہ ہے، یہ پارٹ ہے اس کا، کہ ٹیچرز بھی اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتی ہے. سو کال اسلامک اسکولس کے اندر بھی جو ٹیچرز ہیں، کیونکہ وہ اسی سسٹم کی، اسی سوسائٹی کی تربیتی یافتہ ہے، اس کی زبان پہ وہی کلمات جاری ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی نے اس کو سکھایا ہے. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے. بس یہ کلمات آپ کے اور میرے کنٹرول میں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہالی ووڈ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، میں اس ممبر سے تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو سیکچوئل ڈیزائر کی ایکسپریشن ہے اس میں بھی مجھے اور آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ درحقیقت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آزاد ہو، جیسے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہو آزاد ہو. لیکن اسلام مجھے اور آپ کو یہ تعلیم نہیں دیتا. اسلام مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ وہ رابطے کے جو حلال رابطے ہیں وہاں پر بھی احتیاط کرو. ہر موقع پر، ہر جگہ پر اس کام کو تم انجام نہیں دے سکتے. اگر ایک مرد اور عورت جس کے اندر ایک میاں اور بیوی ہے، حلال طریقے سے دونوں کے درمیان ارتباط قائم کرنا حلال ہے، لیکن قرآن، اہل بیت علیہ السلام مجھے اس بات کی تو اجازت نہیں دیتے کہ میں جب چاہوں، جہاں چاہوں، جس مقام پر چاہوں اس کام کو انجام دوں. یہ ادب کے عین مخالف ہے. قرآن کریم کے اندر، سورہ نور کے اندر جن آداب کو بیان کیا گیا، گھر کے اندر انسان کو اس کا ملاحظہ رکھنا ہے. ایک آیت جس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان نکات کو بیان کیا گیا ہے، سورہ نور چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 58 ہے. ایک بار درود بھیجے محمد و آل محمد پر. قرآن کریم مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، اپنے آپ کے اور میرے گھر کے رابطوں کو بتا رہا ہے کہ کیسے گھر کے اندر ادب کا لحاظ رکھنا ہے. میں ہر موقع پر، ہر مقام پر جیسا لباس چاہوں، میں گھر کے اندر بھی اس لباس کو نہیں پہن سکتا. آئی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ میں کب، کہاں، کیا لباس پہن رہا ہوں، میری لمیٹیشنس کیا ہیں، میری باؤنڈریز کیا ہیں. میں اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھاؤں کہ تمہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر میں نے کہا کہ وہ قرآن، اس بات کو یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو چند بار پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ قرآن کہ جس کے اندر نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں کیا گیا. آپ مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا سکتے ہیں کہ جس میں نماز مغرب کو 3 رکعت پڑھنا ہے، عشاء کو 4 رکعت پڑھنا ہے، فجر کو 2 رکعت اور ظہر عصر کو 4 رکعت پڑھنا ہے؟ آپ کو بیان کیا گیا کام؟ بیان کیا گیا یہ کام؟ نہیں بیان کیا گیا. مگر یہ امپورٹنٹ کام نہیں ہے، قرآن کریم نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا. لیکن بچوں کے حوالے سے ماں باپ کا جو ارتباط ہے گھر کے اندر، کمرے میں کب آنا ہے، کب نہیں آنا ہے، ماں باپ کو کیسا لباس پہننا ہے، کب کیسا لباس نہیں پہننا، تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے. ہم سب اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تفصیلات کب ہمیں بتائی گئی ہیں؟ اسلام کی ان طرز زندگی کو گزارنے کے اصول کب مجھے اور آپ کو بتائے گئے ہیں؟ کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ کیونکہ یہ طرز زندگی امپورٹنٹ ہے. اگر یہ طرز زندگی نہیں ہوگا اور میں نے یہاں پر آداب کا خیال نہیں رکھا، تو بڑا ہو کے میرا بچہ نہ یہ نماز پڑھے گا، نہ عباد، نہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ آئے گا، کیونکہ یہ تو مرکز ہے ادب کا. جب میں نے اپنے بچے کو بے ادب تربیت کیا خدا نخواستہ، तो वो अदब की महफिल से तो फरार करेगा, वो उससे नज़दीक नहीं आएगा, उससे पसंद नहीं होगी कि मैं इन महफिल में जाऊँ। जहाँ पर बेअदबी होगी उससे वो अपने आप को ज़्यादा आसानी से सिंक्रोनाइज़ कर पाएगा, लेकिन जहाँ पर अदब की बात की जाएगी, जहाँ पर एटिकेट्स की बात की जाएगी, जहाँ अख़लाक हुसैनी या मकतब हुसैनी या डॉक्ट्रिन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात की जाएगी, उससे वो फरार इख्तियार करेगा, उससे वो काम पसंद नहीं होगा। लिहाजा ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन आदाब को, इन रविश को सीखने की कोशिश करें। कुरान करीम एक बार दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 58 के अंदर ये फरमाता है कि वो बच्चे कि जो अभी बालिग नहीं हुए, जो बालिग हुए उसका आयत नंबर 59 के अंदर बात की, बालिग नहीं हुए लेकिन वो लोग जो है वो तमीज़ मुमैज़ हैं, तमीज़ के मरहले के ऊपर आ गए, जो नाबालिग है उसका हुक्म इससे पहले बयान किया गया। बस शायद ये जुमला एक और से भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस जुमले को यहाँ पे ताकीद कर रहा हूँ। शायद कुरान करीम बच्चों की तरबियत के अतबार से हमारे पास तीन स्टेजेस है। एक 7 ईयर्स तक का स्टेज है जहाँ पर रिवायात के मुताबिक बच्चा आज़ाद, एक ताबीर तकरीबन इस्तेमाल की, एक बादशाह की ताबीर इस्तेमाल की गई, 7 से लेकर 14 साल यानी मुमैज़ होने के बाद से लेकर बुलूग तक पहुँचने का जो टाइम है इसको कहा जाता है ये गुलामी का है। यहाँ पर ये बच्चे को अदब सिखाने का टाइम है, यू हैव टू लर्न हाउ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन और बाअदब ज़िंदगी गुजारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चे की ज़िंदगी के अंदर जो 7 to 14 ईयर्स का है। और उसके बाद जब बुलूग का मरहला आएगा तो वो फिर एक और मरहला आता है कि जो बात का मरहला है। लेकिन ये जो पीरियड है इसके बारे में कुरान करीम आयत बता रहा है कि जो 7 to 14 ईयर बच्चा मुमैज़ हो चुका है, अच्छे बुरे को समझने लगा है, लेकिन बुलूग के मरहले के ऊपर नहीं पहुँचा, हुलम इसको ताबीर इस्तेमाल किए, वल्लदीना लम यबलुगुल हुलम, हुलम कहते हैं कि जब इंसान बालिग हो जाता है, जब इंसान के ऊपर एहतराम आरिज होता है वो बालिग बुलूग के मरहले के ऊपर पहुँच जाता है। इससे पहले का मरहला जो है कुरान करीम कहता है कि ये बच्चा जब इस एज के अंदर हो, 7 to 14 ईयर्स के अंदर हो, 3 मौके पर माँ बाप की पर्सनल लाइफ के अगर एंटर होना है तो उसको इजाज़त देनी होगी, उसको दस्तक देनी होगी घर के अंदर। ये 2-वे ट्रैफिक है, एक तरफ बच्चे को मुझे और आपको अदब सिखाना है और एक तरफ कुरान करीम माँ बाप को भी सिखा रहा है कि देखो ये फ़कत 3 टाइम्स हैं कि जो तुम्हारे प्राइवेट टाइम्स हैं, इसके अलावा घर की उमूमी ज़िंदगी जब तुम अंजाम दे रहे होंगे तो यू हैव टू बी केयरफुल, अपने बोलने का अंदाज़, अपनी आँखों का अंदाज़, अपने इर्तबात का अंदाज़ तुम्हें केयरफुल रहना है। हर काम की तुम्हें यहाँ पर इजाज़त नहीं है, हर चीज़ को तुम अंजाम नहीं, इस उनवान के साथ कि मसलन खुदावंद आलम ने इस काम को हलाल अंजाम कहा है और इस काम को अंजाम दिया जा सकता है, नहीं, खुदावंद आलम ने लिमिट्स बताई हैं, अदब का ख्याल रखना बताया है आपको और मुझे, महदूदियत बताई गई है और आपको मुझे उस बात का ख्याल रखना है, इन महदूदियत का। कुरान करीम ने 3 मौक़ों को यहाँ पर बयान किया, सुबह की नमाज से पहले, दिन के मौके पर कि जो कैलूले का वक्त है ख़ास मौका है, और एक नमाज इशा के बाद का मौका। इन 3 मौके पर कुरान करीम ने कहा है कि अपने बच्चों को सिखाओ, ये उनको तरबियत दो कि जब घर के अंदर एंटर हो तो दस्तक देकर एंटर हो, जब इजाज़त दे जो प्राइवेट जगह है उसके हवाले से बात की जाए, उमूमी घर के अंदर जो महफिल है वहाँ की बात नहीं की जा रही है, लेकिन वहाँ पर जब हो तो बच्चे की को ये ट्रेन करो कि वो इजाज़त लेकर एंटर हो। जो नुक्ता मैं इम्पॉर्टेंट नुक्ता आपके सामने बयान किया जा रहा हूँ करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि कुरान करीम मुझे और आपको ज़िंदगी गुजारने के आदाब सिखाता है, एटिकेट सिखाता है, तर्ज ज़िंदगी और रविश ज़िंदगी सिखाता है कि इन बातों का ख्याल रखो। अगर खुदा ना खास्ता इन बातों का मैं और आपने सही मानों में ख्याल ना रखा, अब मैंने आपसे कहा कि कुरान तो ये बता रहा है कि घर के अंदर माँ बाप अपने इर्तबात के अंदर किस कदर एहतियात करें, और आपके सामने मेरे सामने सोशल मीडिया है वो सब कुछ इस बच्चे को हर चीज़ दिखा रहा है। आप और मैंने कहा कि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये 180 डिग्री भी शायद 180 डिग्री भी शायद ज़्यादा अगर कुछ होता तो मैं वो इस्तेमाल करता, 180 डिग्री अपोजिट है सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम को, तालीमात कुरानी की 180 डिग्री जो है अपोजिट है, बिल्कुल अलग सिम्त में मुझे और आपको लेकर जा रही है। और मेरे और आपके साथ मुश्किल ये है कि मैं ज़िंदगी उनकी तरह गुजार रहा हूँ और तवक्कुआत मेरी जो है वो तशय्यो शिया अहले बैत अलैहिस्सलाम की तवक्कुआत है, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, मेरी आपकी तर्ज ज़िंदगी मेरे आपके अकीदे और मोहब्बत और हुब्बुस के साथ मैच नहीं कर रही है, मेरा आप ज़िंदगी किसी और की तरह से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वो जो एक मशहूर जुमला है अबू हुरैरा का कि खाना खाना हो तो माविया के दस्तरखान पर चले जाओ और इबादत करनी हो तो अली अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ो, ये सुन्नत अबू हुरैरा है। इस तरीके से मैं और आप किसी नतीजे को हासिल नहीं कर सकते, नोमिनो बेबास व नकफुरो बेबास के ज़रिए से मैं और आप नतीजे को हासिल नहीं कर सकते। अगर ईमान लाना है تو آئے 100% حسینی بن کے مکتب حسینی پہ زندگی گزاریں، پھر مجھے اور آپ کو ثمرات نظر آئیں گے. اور اگر نہیں قبول کرنا ہے تو پھر یہ 50-50 کر کے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے مشکل کریٹ نہ کریں ہم لوگ، کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ہیں تو شیعہ لیکن ہم سب کو جو ہے وہ ان ساری مشکلات کے اندر جو ہم لوگ گرفتار ہیں. یہ گرفتاری اس وجہ سے ہے کہ میری اور آپ کی طرز زندگی اہل بیت علیہ السلام کا طرز زندگی نہیں ہے. میں نے اور آپ نے ان سے درس نہیں سیکھا، میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو جس طرح سے مجھے اور آپ کو تربیت دینی چاہیے تھی اس طرح سے تربیت نہیں دی. لہٰذا میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس لیٹر میں کہ جو آقا اور مولا امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیروان وصیت اور امام کا ایک طولانی وصیت موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر، اس میں میرے مولا نے جو جملہ میرے سلام کلام میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا، میرے مولا نے جملہ کہا انما قلب الحدث کل ارض الخالیہ، ایک نوجوان کا جو قلب ہوتا ہے اس کی جو روح ہوتی ہے اس کی اسپرٹ جو ہوتی ہے وہ ایک خالی زمین کی طرح ہے، ما القیہ فیہ من شیء قبلت ہو، جو بھی اس کے اندر بیج بویا جائے گا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، وہ اس کے مطابق گرو ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے مطابق نرچر ہونا شروع ہو جائے گا. فبادرت کا بالادب، امام عجیب و غریب بات کہتے ہیں، امام یہ نہیں کہتے کہ میں نے تجھے پہلے توحید سکھائی، میں نے تجھے جو ہے وہ نماز سکھائی، میں نے تجھے جو ہے وہ سارے اعمال سکھائے، میں نے تجھے حب و بک سکھایا. میرا مولا کیا کہتا ہے، فبادرت کا جو سب سے پہلی چیز جس میں میں نے جلدی کی اے حسن علیہ الصلاۃ والسلام تجھے سکھانے کے لیے، کون سکھا رہا ہے، سکھانے والا کون ہے، امیر مومن علی ابن ابی طالب، جس کو سکھایا جا رہا ہے وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ شاگرد ہے وہ کون ہے، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام. امام کہتے ہیں فبادر تو کا میں نے جلدی کی، میں نے کہا اگر میں ڈیلے کر دوں گا تو یہاں پر مشکل ہوگی، فبادر تو کا بالادب قبل ان یکسو قلب، اس سے پہلے کہ تمہارا قلب کسی القلب ہو جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری زمین اس قابل نہ ہو کہ اب اس میں بیج بویا نہ جا سکتا ہو یا اس میں کوئی اور اپنا بیج بو دے، اس سے پہلے میں نے جلدی کی تو میں تمہیں با ادب بنا دوں، تاکہ اس کے بعد جب بھی تمہیں سمجھ میں آئے کہ تمہارا ایک خالق ہے تم اس کے سامنے بھی ادب کا اظہار کرو گے، جب تمہیں سمجھ میں آ جائے تمہارا ایک ولی ہے تو اس کے سامنے بھی تم ادب کا خیال رکھو گے، جب تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ تمہارے ماں باپ کا تمہیں احترام کرنا ہے تو وہاں پہ بھی تم جو ہے وہ ادب کا لحاظ اور ملاحظہ کرو گے. یہ نقطہ میں نے آپ سے کہا کہ جو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے حقوق رسالۃ الحقوق کے اندر ایک بار درود بھیجے محمد علی محمد، جو ایک حق بچوں کا ماں باپ پر بتایا ہے اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اسے ادب سکھائیں، اس کو حسن الادب سے کے ذریعے سے جو ٹرین کریں. اگر یہ بنیادی کام ہے اور آپ انجام نہ دے سکے تو یہ ایک بہت خطر کی گھنٹی ہے ہم سب کے لیے. خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے وہ روش زندگی کی جو اہل بیت علیہ السلام کی روش زندگی ہے، وہ روش زندگی کی جو قرآن نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار درود بھیجے محمد والے محمد پر. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى شاید کربلا میں آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پنجتن پاک میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن ہر ایک کی ایک نشانی اس بن میں موجود تھی حسین کے ہمراہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ کی صورت میں علی اکبر موجود تھے. شاید علی کی نمائندگی ابوالفضل عباس کر رہے تھے. میری بیوی فاطمہ الزہرا کی نمائندگی ثانیہ زہرا کر رہی تھی.
لیکن میرے آقا اور مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت واقع ہو رہی تھی، میرے مولا نے بہت درد کے ساتھ یاد کیا تھا، جب حسن گریہ کر رہے تھے آقا اور مولا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بھائی کیوں گریہ کرتے ہو؟ کہا، حسین تمہارے غم میں گریہ کر رہا ہوں. بھائی نے بھائی سے کہا کہ آپ اتنی سختی سے اس وقت گزر رہے ہیں، لیکن میرا مولا یہ فرماتے ہیں، لا یوم کیوم میں کیا ابا عبداللہ، حسین آپ کے دن کی طرح کوئی سخت دن نہیں آنے والا اس کائنات کے اندر. میرا آقا و مولا امام حسن تو موجود نہیں تھا، لیکن ان کے فرزند موجود تھے. آج ایک فرزند کا ذکر کرتے ہیں، اگر شاید خدا نے توفیق دی کل یا پرسوں دوسرے فرزند کا ذکر کریں گے. اس بیٹے کا نام تھا قاسم. راوی یہ جملہ کہتے ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، یہ جو قبل ان یبلغ الحلم کی بات کی، راوی مقتل کے اندر یہ کہتا ہے، ایک ایسا نوجوان تھا کہ قبل ان یبلغ الحلم، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا تھا، 13-14 سال کا یہ پاک و پاکیزہ جوان، مکتب حسینی کا تربیتی یافتہ جوان. شب عاشور جب میرے مولا نے ان جوانوں کا، ان اصحاب کا، ان انصار کا امتحان لے لیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کو بشارت دینا شروع کی. ایک جوان ایک کنارے پہ بیٹھے اپنے چچا کی باتیں سن رہا تھا، اپنے ولی کی باتیں سن رہا تھا، اپنے امام کی باتیں سن رہا تھا. ایک بار اپنے ولی سے پوچھتے کیا مجھے بھی یہ توفیق نصیب ہونے والی کہ میں اس شہادت کے میڈل کو اپنے گلے میں ڈال سکوں؟ میں بالغ تو نہیں ہوا، لیکن آیا یہ مجھے اجازت مل سکتی ہے کہ میں اس کام کو انجام دے سکوں؟ امام نے حضرت قاسم کا ایک امتحان لینا چاہا. شاید حضرت قاسم سے پوچھا، بیٹا شہادت کو کیسے دیکھتے ہو؟ بیٹا موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ کہا، چچا احلا من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے میری نگاہ کے اندر یہ شہادت. میں تو آرزو کرتا ہوں، میرے بابا نے تو مجھے اسی طرح سے تربیت کی تھی کہ مجھے اپنی جان کو نچھاور کرنا ہے اپنے ولی کے اوپر. چچا نے جب یہ سنا تو کہا، خبر دی کہ ہاں قاسم تم بھی شہید ہونے والے ہو. ارے عبداللہ رضی بھی شہید ہونے والا ہے. صبح ہوتی ہے جب انصار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب علی اکبر اپنے آپ کو اپنے ولی پر قربان کر لیتے ہیں، ایک 13 سال کا جوان کھڑا ہوتا ہے، اپنے چچا سے اجازت لیتا ہے. راوی یہ کہتا ہے، وخرج غلام کان وجہ شقت و قمر، حسین کے خیمے سے 14ویں کا چاند نکل رہا تھا، 14 سال کا ایک جوان. میں کہوں گا اے راوی، شاید تو نے چاند کی تعبیر استعمال اچھی نہیں کی، یہ 14ویں کے چاند اس پر فخر کرتا ہے، یہ کمرے بری ہاشم کا شاگرد ہے، اسے قاسم ابن حسن کہا جاتا ہے، یہ جوان باہر نکلتا ہے. لیکن راوی ایک عجیب و غریب جملہ کہتا ہے، راوی یہ کہتا ہے کہ یہ جوان نکلتا ہے خیمے حسینی سے باہر، لیکن جسم پر عربی لباس ہے. میں کہوں گا قاسم کے سر پہ خول نہیں ہے، ارے قاسم نے زرہ نہیں پہنی. ارے اس طریقے کے نوجوانوں کے لیے کربلا میں زرہ موجود نہیں تھی، خول موجود نہیں تھا. قاسم اس پاکیزہ صورت کے اندر دشمن کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں، جنگ کی جاتی ہے. ایک موقع ایسا آیا، کربلا کے بند میں صدا گونجی، یا اے چچا. راوی یہ کہتا ہے، حسین ایک بپڑے ہوئے شیر کی طرح مقتل کی طرف حملہ آور ہوتے ہیں. قاتل قاسم کو گرفتار کیا، اس پہ حملہ کیا، قاسم کے قاتل نے دشمنوں کو سزا دی، جاتی بھی فوج پلٹ کے واپس آنا شروع ہوتی ہے، حسین جنگ کرتے جاتے ہیں. لیکن ایک نہیں صدا آتی جاتی ہے، چچا یا اماں، چچا میری خبر لو، میرے مولا نے جب دشمنوں کو بھگا دیا، گرد و غبار تھمی، حسین نے ایک بار اس نوجوان کے لاشے پر نگاہ کی، کہا قاسم تیرے چچا پر بہت سخت ہے کہ جب تو آواز دے تو تیری آواز پہ لبے نہ کہہ سکے، اور جب لبے کہے تو تیری مدد نہ کر سکے. مجھے نہیں معلوم قاسم کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا، لیکن راوی یہ کہتا ہے جب میرے مولا نے 13 سال کے اس نوجوان کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا تو قاسم کے پیر میدان کربلا میں خط بناتے ہوئے جا رہے تھے. مجھے نہیں معلوم قاسم کی ماں جس نے اپنے جوان کو اپنے بلی پر قربان کرنے کے لیے آمادہ کیا. میں کہوں گا بی بی فرما آپ کو مبارک ہو، آپ کے نوجوان نے اپنے ولی کی بارگاہ میں ایک عظیم قربانی کو انجام دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَاتَمِ حُسَيْنِ